जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायालम नमो लोये सर्वसाहूणम त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेहम् सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा रमियूण जिनं वीरं अनन्तवर्णान् दंशन सहावम् वोच्छामि नियम सारम् केवली सुद केवली वणिदम् आचार्य कुंदकुंद देव की अनुपम रचना जो उन्होंने अपने स्वयं के भावों के घोलन के लिए बनाई है, ऐसा ये नियम सार शास्त्र परमागम यहां विराजमान है। इसमें अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, थोड़ा सा अंश कलश 228 का था और बाद में गाथा 138 योग भक्ति इस विषय पर उनके मार्मिक उद्गार अपन सबने सुने हैं। थोड़ी चर्चा अपन उस पर करते हैं। पहले आप 258 पेज निकालें। विषय वो कल परसों से वो बात ही चल रही है, कारण समय सार ने जोड़े छे, परिणति ने जोड़े छे, पोता ने निर्मल योग में जोड़े छे, इस प्रकार की जो पॉइंट आए हैं मुख्यतया उसी का खुलासा इसमें चल रहा है। ये विषय थोड़ा सूक्ष्म और गंभीर है और जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ख्याल में है, प्रमाण विवक्षा में कैसा है, नए विवक्षा से कैसा है, शुद्ध नए से कैसा है, तो उनको तो ये बैठेगा। और जिसने द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा भी नहीं जानी हो उसको लगेगा क्या कहते हैं इसे है? इसलिए भाई सुनने के साथ साथ स्वयं निजी स्वाध्याय भी होना चाहिए, उससे ही अपन गुरुदेव की वाणी की गहराई में जा सकेंगे। तो इसमें देखिए, इस पैराग्राफ में 3-4 पंक्तियां हैं, ये बार बार ये चर्चा आई है। सबसे ऊपर का पैराग्राफ है पेज नंबर 258 पर, ते पोतानी परिणति द्वारा आत्मा ने आत्मा साथे निरंतर जोड़े छे। कौन जोड़ता है, किसको जोड़ता है, किस में जोड़ता है, योग है ना, योग, योग माने जोड़ना, जोड़ना। अभी का योग तो थोड़ा एक्सरसाइज दूसरी हो गई, उसमें गुरुदेव ने याद भी किया था योग नु शिविर काले छे, ऐसा आम करो ऐसा कह के। तो आत्मा ने आत्मा साथे जोड़े छे अने परिणति द्वारा जोड़े छे। इसमें ऐसा लगता है तीन चीजें हैं, एक आत्मा है, फिर वो दूसरा भी कोई आत्मा है जिसको आत्मा के साथ में जोड़ना है, और तीसरा चीज वो फेविकॉल टाइप की होनी चाहिए, बीच वाली, जो जिसके द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे गोंद मोंद लगा करके टिकट को लिफाफे में चिपका देते हैं, तो वैसे वैसा कुछ होगा। देखो भैया, अभेद प्रक्रिया को भी जब तक भेद से ना कहा जाए तब तक कथन संभव नहीं है। तो वास्तव में तो आत्मा निर्मल परिणति रूप परिणमता है, पर्याय द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके सहज आनंद, सहज ज्ञान, सहज सुख, पर्याय में जो निराकुल आनंद ज्ञान प्रकट होता है, उस रूप परिणमन का ही ये सब कथन है। इसलिए देखो, इसमें मुझे तो क्या बताना है कि जैम आत्मा निरंतर ध्रुव छे, तेम ध्रुव तरफनु वलन पण नित्य छे। ये मुझे तो ये सेंटेंस बताना था। अभी किसको कितना ख्याल में आएगा, ये आप सबका उपादान स्वतंत्र है, जुदा जुदा है, है? नहीं आए तो भी सुनने में एकाग्रता रखना, जिज्ञासा रखना कि क्या कहते। देखो, पहले दिन कोई बच्चा क्लास में गया हो और पहले दिन ही उसको सारा विषय समझ में आ गया हो, ऐसा तो होता नहीं। लौकिक विद्या के लिए भी ए फॉर ए, क्या बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये सीखने के लिए भी बच्चे को उसके लेवल का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। वो तो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, भाग जावे। तो जब क्लास में बैठने से समझ में नहीं आता तो क्लास से भागने पे कैसे समझ में आ जाएगा? कोई भी कन्या थोड़ी बड़ी हो जाए और माता कहे चल मेरे साथ किचन में आ जा, अभी थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ना, तो पहले ही दिन पूरी मास्टर हो जाए हर चीज, ढोकला बनाने में, ये बनाने में, ऐसा होता है? दुनिया की ऐसी कौन सी विद्या है जो निरंतर अभ्यास के बिना आ जाती हो, बोलो आप, जगत की, जबकि आत्मा उसका करता नहीं है, वो तो खाली विकल्प ही करता है, तो भी ये जीव उसके लिए रुचि पूर्वक, लगन पूर्वक, जैसा कि कल गुरुदेव ने कहा था, पाचल पढ़ना चाहिए, लगन लगनी चाहिए, तो पढ़ता है, क्यों उसमें हित दिखता है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी उधर की रुचि ज्यादा है, इधर की रुचि क्यों नहीं है। तो रुचि कहाँ होती है? जहां सुख भासित होता है, जहां हित दिखता है, वहां रुचि होती है। तो हमको हित यहां कैसे दिखे? अब तो हर चीज आपसे ही पूछना चाहता है और उसका बस चले तो, जैसे मार्केट में हर चीज रेडीमेड मिलती ना, ऐसे सम्यक दर्शन भी अगर रेडीमेड मिलता हो कहीं बढ़िया, चाहे कितना पैसा लग जाए कोई परवाह नहीं, विक्रम भाई कितना पैसा लग जाए, लेकिन रेडीमेड पैकेज अगर सम्यक दर्शन का होवे, और एक पंथ है ऐसा है भी उसने डॉक्टर साहब को ऑफर किया था, आप हमारे साइड में आ जाओ, पहले तो हम 2 घंटे में आपको सम्यक करा देंगे और फिर आपको जो बिल्कुल टॉप की जो पोजीशन है उसमें रख देंगे। आप हमारे, उसको पता ही नहीं है कि ये भाव का अभाव करने का मार्ग है, इसमें कोई ये संप्रदाय और वो संप्रदाय का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, इधर चल क्या मिल जाएगा है? तो बात क्या चलती है, आत्मा निरंतर ध्रुव छे, तेम ध्रुव तरफनु वलन पण नित्य छे। आ हा, आत्मा ध्रुव नित्य छे, तेम तेना तरफनी सन्मुक्तानी परिणति पण नित्य छे। अब पर्याय भी नित्य होती है, अपन ने तो ये सुना है पर्याय एक समय की होती है, उत्पाद व्यय एक समय में, उत्पाद दूसरे समय में गई, पानी की तरंग पानी में उठी और पानी में गिरी है, ऐसा सिद्ध चक्र विधान में आता है। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, ज्यों सिंधु लहर है सिंधु और कछु नाही। समुद्र में जैसा पानी है वैसी तरंग उठेगी है? और वो एक समय में गिर जाएगी तो पर्याय तो एक समय की होती। तो यहां ध्रुव क्यों बोला? वो पर्याय में जो प्रवाह है स्वसन्मुखता का, अतिंद्रिय आनंद का, अतिंद्रिय ज्ञान का, वो एक एक समय की पर्याय होने पर भी उसमें जो ज्ञान आनंद का प्रवाहीपना है वो खंडित नहीं होता। इस अपेक्षा से पर्याय को भी नित्य ध्रुव कहा है। द्रव्य रूप जो ध्रुव है वो तो नहीं पलटने वाला, वो का वो रहने वाला, निष्क्रिय ध्रुव तत्व है, पर उसमें जमने वाली, रमने वाली, उसका अवलंबन करने वाली जो पर्याय है, स्वसन्मुख पर्याय, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोलो, तो वो धारा उसकी नहीं टूटती। सम्यक दर्शन की, ज्ञान की वो धारा नहीं टूटती, इसलिए नित्य का है। कभी आपको अगर समय मिले और आपका भाव होवे तो शायद अपने यहां जो जिनेन्द्र रचना की पूजा की पुस्तकें हैं, मेरे ख्याल से उसमें होगी पंच बाल यति पूजन, अन्यथा इसमें दी है, अपने प्रवचन सार विधान में भी दी है कि हमारे बहुत से जो विधानाचार्य साथी हैं उनको उसकी बड़ी लगन है, तो वो हर पुस्तक में नहीं है इसलिए उसमें भी डलवा दी। ये पॉइंट उसमें आया अक्षत के छंद में, परिणामों के ध्रुव प्रवाह में बहे अखंडित चेतन भाव, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव में एक अखंड अभेद स्वभाव, निज गुण पर्यायों में जिनका अक्षय पद अविचल अभिराम, पंच बाल यति के चरणों में। इस तरह का है परिणामों का ध्रुव प्रवाह, गजब है। ध्रुव की ध्रुव परिणति और परिणाम का ध्रुव प्रवाह समझने लायक बात है, इसलिए छेड़ा मैंने इसको। अब तो दो दिन बचे ना, अभी तो है थोड़ा बहुत और खजाना सामने आ जावे। देखो हिमालय तो जैसा ऊंचा खड़ा हुआ है वो तुंग, वैसा ध्रुव रहता है, और जो गंगा का प्रवाह है वो ध्रुव है कि क्षणिक है, सोचना बोलना नहीं। गंगा भी ध्रुव है, वो प्रवाह नित्य है, एक क्षण के लिए भी वो प्रवाह कहीं रुकता नहीं है, इस अपेक्षा से ध्रुव है। और नदी तो सदा नदी रूप में रहती, कभी वो समुद्र में, जब वहां मिलेगी समुद्र में तब की बात दूसरी है, लेकिन वो नदी कभी नाला नहीं बनेगी, कभी नहर नहीं बनेगी, कभी पहाड़ नहीं बनेगी, समझ में आया ना, कभी खान नहीं बनेगी, कभी आसमान नहीं बन जाएगी, सूरज चांद नहीं बन जाएगी, वो नदी नदी ही रहेगी। तो वस्तु अपने स्वरूप में रहती है, इसी को ध्रुवता बोलते। जीव सदा जीव रहता है, कभी पुद्गल नहीं होता, इसी का नाम ध्रुवता है, समझने की बात है। परिणामों के ध्रुव प्रवाह में, जिसमें से याद आया ध्रुव नित्य छे आत्मा तेन तेना तरफनी परिणति सन्मुखतानी परिणति पर नित्य छे, एने धर्म ने योग कहवामां आवे छे। इसी तरह सबसे नीचे इसी पेज पे नीचे का पैराग्राफ पढ़ता हूं, इसमें से क्या बताना है वो मैं फिर चर्चा करूंगा। आत्मा क्रमबद्ध पोतानी पर्याय ने ते पण निर्मल ने करे त्यारे एक करता कहवाये छे। ये विषय आपने बहुत सुना होगा, जो पर का करता तो नहीं है आत्मा, शरीर आदि का करता तो नहीं है, वो तो सर्वथा नहीं है, क्योंकि परद्रव्य सर्वथा भिन्न है, पर अपनी पर्याय तो सर्वथा भिन्न नहीं है, वो तो द्रव्य स्वयं परिणमता है, तो अपनी पर्याय का करता है कि नहीं, तो उसके लिए आपको भाई साहब नए चक्कर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है नए विवक्षा समझनी पड़ेगी। अपनी पर्याय का करता है तो पर्याय आर्थिक नए से, अथवा सद्भूत व्यवहार नए से, असद्भूत नहीं, समय सार में तो असद्भूत व्यवहार नए से आत्मा धंधा व्यापार करता है, ये भी लिखा है, समझ में आया। घट पट रथ इत्यादि का करता है, कार चलाता है, कार बनाता है, पैसा कमाता है, पर ये सब कथन असद्भूत व्यवहार ने का है, कहने मात्र का है, निमित्त की अपेक्षा का है, वास्तव में आत्मा पर का करता नहीं है, अपनी पर्याय का है कि नहीं। तो आगम विवक्षा में देखें तो अपनी समस्त पर्यायों का करता है। कल आया था 189 गाथा में शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया था, प्रवचन सार में आया था, हे प्रभु हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आप शुद्ध नय की प्ररूपणा में द्रव्य को रागादि का कर्ता आत्मा को कहते हो, ये कौन सी विवक्षा है? ये टीका में है सब, ये सब बातें वो टीका से ही लिया है। समय सार की शैली में आत्मा रागादि का ज्ञाता मात्र है, निर्मल पर्याय का करता है, वो भी ज्ञानी की बात है। निर्मल पर्याय ने करे त्यारे ये कर्ता कहवाए, तो कहवाए ध्रुव स्वभावनी अपेक्षा तो ते पण करता नहीं, ऐसा है। और अज्ञानी रागादि भावों का करता है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, सुनना ध्यान, उसमें है नाटक समय सार में, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, दर्व कर्म पुद्गल करे यह निश्चय परवान। ज्ञानी ज्ञान भावों का करता, अज्ञानी अज्ञान भाव माने मैं पर का करता हूं कि मैं राग का करता हूं, ऐसी मान्यता का करता है। कल्पना में रागादि का करता हो गया तो उसको रागादि का करता कह दिया। स्वभाव दृष्टि से देखो तो अज्ञानी भी वो भी रागादि का करता, पर वो स्वभाव की बात है। अज्ञानी को अज्ञान के चश्मे से देखेंगे तो वो तो रागादि का करता है। अभी देखना, आत्मा पवित्र छे शुद्ध छे तेथी ते शुद्ध परिणति करे, त्यारे परिणति नो जोड़ाण स्वमाज होए। जब शुद्ध पर्याय यानी वितरागी पर्याय, आनंद की पर्याय, निराकुल आनंद की पर्याय वो जब होती है तो उसका जोड़ाण यानी उसकी वो आत्मा के सन्मुख होती तो ही शुद्ध होती है। समझ में आया? शुद्ध कहते ही उसको है जो पर का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान आचरण उस पर्याय में रागादि उत्पन्न नहीं हुए तो शुद्ध पर्याय हो गई। अभी अशुद्ध की क्या स्थिति है ये बतानी है मुझे, है? अशुद्ध परिणति नो जोड़ाण पर साथे होए, छता अशुद्ध परिणति पर थी थई नथी। जैसे जैसे रहस्य गुरुदेव निकाल देते हैं सहज में ही, जैसे इसका मतलब समझे आप, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी वस्तु देखी आपने और वो अच्छी लगी, उसके प्रति राग हुआ कि मुझे मिल जाए, समझ में आया? तो वो कहते वो राग उस वस्तु में से नहीं आया है, ये कहते। देखो अशुद्ध पर न थी, पर थी थई न थी, पर मां थई न थी, पर थी थई न थी, पर ने अड़िया बिना थई छे। वाह, दूध पाक बहुत बढ़िया बना और आपने उसका सेवन किया, बहुत इष्ट कल्पना हुई, आनंद की कल्पना हुई, वो अशुद्ध हुई। लेकिन जो आनंद का अनुभव हो रहा है तथा कथित आनंद, वो दूध पाक में से नहीं आया। अरे दूध पाक को छूता भी नहीं है, कहा तो ऊपर ये था कि अशुद्ध परिणति नो जोड़ाण पर साथे होए। उसका खुलासे में गुरुदेव ने ये और खास एक्स्ट्रा बातें कह दी। उसका लक्ष्य पर की तरफ होता है, लक्ष्य होने मात्र से कोई पर से कुछ लेना देना हो जाता है ऐसा नहीं है। थोड़ा सूक्ष्म बात है भाई, पर तो अभ्यास में तो सब सरल हो जाता है, कोई ऐसी कठिन बात नहीं। टीवी देखने में जो आपको मैच देखने में बच्चों को मजा आता है तो वो टीवी में से नहीं आया, वो मजे का परिणाम और टीवी को भी नहीं छूता है, वो उसकी अपेक्षा नहीं रखता है। किसी को वो टीवी देखते ही से क्रोध आ जाए तो पत्थर मार के तोड़ देता है, हिंदुस्तान हार रहा हो गए ना, है? पाकिस्तान में ऐसा बहुत होता है, जब भारत पाकिस्तान का मैच हो गए तो वो लोग इतने एक्साइट हो जाते हैं वो टीवी तोड़ देते, वो आनंद क्यों नहीं लेते? खैर उन्हें जो क्रोध आया है वो भी टीवी में से नहीं आया है, समझ में आया? गुरुदेव कहते हैं टीवी में से नहीं आया ये तो ठीक, पर वो टीवी को छूता भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा निमित्त टीवी है। ऐसा अशुद्ध पर्याय भी अपने समय की स्वकाल की सत है, ये कहना है। शुद्ध पर्याय भी अपने समय की स्वकाल की सत है, सट कारक से होती है, और अशुद्ध पर्याय भी अपने समय के स्वकाल की सत है। ऐसे ऐसे बहुत बहुत बोल निकलते हैं भाई, हर एक बोल में इनका तो इनका भी मैंने तो एक एक भव्य ट्राई किया है कि देवलाली में जब गुरुदेव का व्याख्यान मेरा सुबह का नंबर आवे, जब भाई साहब नहीं रहते हेमचंद जी तो सुबह का चांस रहता है, नहीं तो शाम को होता है, तो रिकॉर्डिंग तो करते ही हैं। तो 15-20 मिनट तो नियम से जो विषय गुरुदेव की सीडी में आया है उस पर चर्चा होती। फिर अभी जो हमारे समझ लो कोई परिचित हैं समझ लो फैमिली के, वो उसको वेबसाइट पे डालने के लिए प्रयास करते हैं। तो उनको मैंने बोला कि ये जो 15 मिनट वाला जो है इसकी एक कॉपी अलग बना दो, उसमें भी रहने दो और अलग भी बना दो। समीर को बोला, समीर है ना अपना 30 नंबर वाला, तो और उसका अलग सीडी बना के गुरुवाणी मंथन ऐसा नाम दो उसमें। तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों को थोड़ा इस तरफ का ज्यादा रस नहीं है, गुरुदेव को सुनने का उसका टच नहीं है, तो वो सीडी सुने। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये पेज पर पेज में गुरुदेव ने ये बात कही, उसमें ये रहस्य भरा है, उसमें ये रहस्य भरा है, तो महिमा आवे कम से कम उसको, समझ में आया। ऐसा है, वैसे तो बहुत सारे व्याख्यान है पर इसका एक अलग ग्रुप बनाना ऐसा। क्यों? देखो अभी ये 261 पेज पर करुणा का कितना सुंदर नमूना है इसमें, करुणा का 261 पेज पर सबसे नीचे का, नीचे से ऊपर वाला, बदा भगवान छे बदा भगवान थाओ, ये गुरुदेव का महामंत्र है, है? कर्म रहित थाओ, कोई दुखी न थाओ। भाई एक बात और है कि अपन ये शब्दों में से पढ़ेंगे ना तो वो रस नहीं आएगा, ये तो सुनते समय पढ़ने का है, वर्ड टू वर्ड जो है, ये स्वाध्याय की व्यक्तिगत स्वाध्याय की चीज नहीं है। आप लोगों को तो खैर अभ्यास है, अभी मुझे भी प्रैक्टिस हो गई, तो मुझे मान लो कोई पॉइंट नोट करना है या कमेंट्स करना है जाके, तो मैं इसमें से ही देख के पॉइंट लगा लेता हूँ, घर पे देख के भी चला जाता हूँ वहां स्वाध्याय हाल में। लेकिन जिसको गुरुदेव की शैली का परिचय नहीं है वो पढ़े तो पागल हो जावे कोई वाक्य पूरा नहीं है, कहां से बात आती है, कहां जाती है, क्या प्रकरण है, क्योंकि बोलने की स्टाइल अलग होती है, लिखने की अलग होती है। लिखने में तो एडिटिंग होनी चाहिए, पहले जो प्रवचन रत्नाकर वगैरह प्रकाशित हुए तो वो एडिटिंग करके हुए, तो उसमें पूरा फ्लो है, व्यवस्थित है, सेंटेंस पूरे हैं, पॉइंट हैं, सब है, समझ में आया। लेकिन जब ये छपा तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या तरीका है, जैसा बोला दुनिया में ऐसा कभी होता है कि आदमी जो बोले वो ही लिख दे हू बहू? और पहले तो ऐसा भी ऐसा आया ना तो वो भी लिख दे खांसी, गुरुदेव हंसे हो तो उसमें कोष्टक में लिखा था मुक्त हास्य, ऐसा था, मैंने देखा है खुद, समझ में आया। खांसी आए तो खांसी लिख देवे, हंसी आए तो हंसी लिख देवे, फिर उनको भी थोड़ा समझ में आया होगा तो उनने उतना तो सुधार किया। लेकिन शुरुआत में ही अगर ये पुस्तक के प्रारंभ में ही बड़े अक्षरों में, जैसे आपने ये इधर ये एक एक्स्ट्रा पेज लगाया ना, वहां मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, यह पुस्तक ये ग्रंथ गुरुदेव की सीडी सुनते समय साथ में रखें और इसका लाभ ले लें। तो जब अपना देवलाली में अपना ऑफिस चलता था ना पारमार्थिक ट्रस्ट का, तो वहां काम हुआ 2-3 साल इसका, तो वो एक उन्होंने सीडी बनाई गुरुदेव की आवाज में समय सार इत्यादि गाथाओं की, जो गुरुदेव ने गाई हुई है वो गाथाओं की, और उसके साथ में गुटका। मैंने कहा इसमें लिखो पढ़िए सुनिए योजना, ये हमारी पढ़िए सुनिए, एक साथ दोनों काम करो, उसमें पढ़ो भी और सुनो भी, ऐसे वर्ड टू वर्ड जो है सीडी के साथ में सुनोगे तो आपको कली कली खिल जाए। उसमें उनका जो उतार चढ़ाव है, उनका भाव है, वो वाणी में झलकता है। अभी मैं पढ़ूं तो ये तो रूखा रूखा लगेगा है। देखो बदा भगवान छे भगवान थाओ, बदा कर्म रहित थाओ, कोई दुखी न थाओ, भाई आहा हा, ये द्रव संग्रह में छे। इस तरह से एक करुणा की दृष्टि से मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। अभी 262 पेज, क्या गजब की बात है। चाहे तो अनंत बार 66,000 भव निगोदना करिया। ये कल भी आया था ये पॉइंट, क्या अंतर मुहूर्त में 66,336 भव निगोदना करिया, पण आत्मा तो जेवो छे तेवो ने एवो त्रिकाल निरावरण छे। ये दृष्टि बहुत कमाल की चीज है। ये पर्याय तो पैकिंग है, ये निगोद की पर्याय हो के पंचेंद्री हो के मनुष्य हो के स्वर्ग का देव हो, ये चार गति ये तो पैकिंग है, हार्डवेयर है। इसके अंदर जो चेतना ज्ञान घन वो तो निरावरण, देखो उसको निरावरण बोला, त्रिकाल निरावरण। वास्तव में स्वभाव दृष्टि से देखने की आदत हुए बिना स्वाध्याय का कोई मतलब ही नहीं है। स्वाध्याय करना ही इसलिए क्योंकि पर्याय दृष्टि से देखने की टेव तो अनंत काल से है और उससे ही संसार में भ्रमण हो रहा है, ख्याल में आया। लेकिन वो निगोद वाले जीव को भी भगवान आत्मा देख लेना, कौन देख सकता है? जो अपने को वर्तमान में देह से भिन्न देखेगा वो सब जीवों को वर्तमान में देह से भिन्न देख सकता है। ये बात गुरुदेव ने जो पहली गाथा की टीका है समय सार की, उसके व्याख्यान में बहुत बढ़िया विस्तार से कही। मैं अपने आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करता हूँ और श्रोताओं के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करता हूँ। तो दूसरे के आत्मा को सिद्ध समान देखेगा वो अपने को नहीं देखेगा, अपने को देखेगा तो ही तो पता चलेगा कि मेरे जैसा सब जीवों का आत्मा सिद्ध समान है। इसी तरह से अभी एक और थोड़ा अलग टाइप का प्रयोग है, 263 पेज देखो। क्या तो गुरुदेव भी नई नई भाषा डेवलप करते हैं। ये सबसे ऊपर का पैराग्राफ, अंतर्मुख निज कारण समय सार स्वरूप ने जे अति आसन्न भव्य जीव सदा जोड़े छे, आत्मा को पर्याय में जोड़ता है। कल भी मैंने इसका खुलासा किया था। सीधा सरल अर्थ तो यह है कि वो पर्याय रूप परिणमता है, उस परमन में ही जोड़ना है, उसी में भक्ति है, उसी में पर्याय द्रव्य में जुड़ गई, द्रव्य पर्याय में, जिधर से देखना हो उधर से देख लो। अभी एक मेक हो गई तो अभी कौन किससे जुड़ा, समझ में आया? ये तो ऐसा है जैसे वर और कन्या की शादी हुई तो वर पक्ष वाले कहेंगे हमारे बेटे की शादी हुई, कन्या पक्ष वाले कहेंगे हमारी बेटी की शादी हुई, समझ में आया ना? अभी किसकी किससे हुई कोई ऐसा भेद कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इसकी तो नहीं हुई, तो इसकी है, इसके साथ में हुई है। कन्या पक्ष वाले कहेंगे नहीं नहीं, उसकी थोड़ी हुई है, हुई तो हमारी बेटी की है पर उसके साथ में हुई है। अरे तुम शादी का मतलब नहीं समझते हो, जिसमें भेद नहीं रहे, दो दुखी प्राणी एक हो जाए। कल बताया था ना। उसी का नाम शादी है भाई। ऐसे द्रव्य पर्याय एक में एक हो गए, यानी पर एक में, ये तो वन वे है, सुनो ध्यान से। ये जो एक में एक अभेद अनुभूति वाला जो है ना, ये वन वे सिस्टम है। द्रव्य में तो द्रव्य यानी त्रिकाली जो घन पिंड वस्तु है, परम परिणामिक भाव स्वरूप, उत्पाद व्यय से भी जो कथनचित भिन्न है, वो तो पर्याय को छूता भी नहीं है, तो उसकी तो शादी होती नहीं है। समझ में आया? पर्याय ही उसके सन्मुख होकर ये मैं हूं ऐसा करके उसमें अहमपना स्थापित करती। बहुत दिनों पहले लिखा था कवि, मैं नहीं, पर्याय द्रव्य से बोलती है, पर्याय द्रव्य से, उसका नाम है कविता का परिणति के स्वर। अभी तीन चार पहले उदयपुर से एक पुस्तक छपी थी कोई, तो उसमें ये कविता दी उन्होंने, मैं नहीं मैं, तुम नहीं तुम, तुम हुए मैं बनी तुम, द्वैत की मिट गई दूरी, मैं विलय हूँ मात्र हो तुम, दृष्टि प्राची मैं उदित हो, आओ तो बन कर सवेरा, तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा, वो पर्याय द्रव्य से कहती है तुम हमारा कल्याण करने वाले शंकर भगवान बन जाओ और जितना मिथ्यात का जहर है सब सब समाप्त कर दो। मैं नहीं, तुम नहीं, तुम मैं हो गई, मैं तुम हो गया, अभी मैं तुम का भेद ही मिट गया ऐसा। लेकिन ये सारा अभेद अनुभव का जो खेल है वो पर्याय में ही होता है। द्रव्य तो ऐसा ऊंची चट्टान जैसा है बिल्कुल के जिसमें नदी का प्रवाह पानी बहता रहता है बहता रहता है बहता रहता है और पत्थर की चट्टान अपनी जगह पर ध्रुव खड़ी रहती। ऐसे पर्याय सिनेमा का पर्दा होता कि नहीं, पर्दा कितना बढ़िया उदाहरण, पर्दा और पर्दे पर होने वाले चित्र बोलो एक में एक है कि जुदे जुदे है। अरे वो पर्दा नहीं हो तो वो चित्र ही नहीं दिखे। वो उपादान की अपेक्षा देखो तो पर्दे के परमाणु ही वो चित्र रूप परिणमित होते हैं। समझ में आया? पर यहाँ वो विवक्षा नहीं है, यहाँ तो पर्दे का स्वभाव और उस पर बनने वाले चित्र। अभी चार चित्र अपन उसमें फिल्म आते हैं, चार आपके यहाँ ऊपर आते रहते ना चित्र इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में बदलते, उसका मैंने एक सजेशन दिया है भव्य को, बहुत बढ़िया आपसे चर्चा करेंगे। वो तो चित्र में चार चित्र बनाए अपन, एक का नाम उपसंभाव, एक का नाम क्षय उपसंभाव, एक का नाम छायक भाव, एक का नाम औदेक भाव। अनादिकाल से औदेक भाव है, क्षय उपसंभाव है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उपसंभाव हो गया, सम्यक का भी क्षय उपसंभाव हो गया, फिर छायक भाव हो गया और परमानेंट फिर सिद्ध भगवान बन गया तो छायक भाव का चित्र है। कोई भी चित्र आवे जावे लेकिन पर्दे का जो श्वेत धवल स्वरूप है वो चित्र में खिसक के नहीं आता है। गजब बात है, हैं? तो ये अंतर्मुख निज कारण समय सार स्वरूप ने जे आसन्न भव्य जीव सदा जोड़े छे एनो अर्थ ए आमे थाय छे। अभी थोड़ा नया पॉइंट, वर्तमान मोक्षनो मार्ग छे एक कारण समय सार छे, निज कारण समय सार स्वरूप ने जोड़े छे एम कहवू होए तो वर्तमान जे निर्मल परिणति छे ए निज कारण समय सार त्रिकाल छे ए तो छे पण मोक्षनो मार्ग छे ए कारण समय सार छे। थोड़ा बहुत समझ में आया नक्शा, इसका ख्याल में आया है? देखो कारण समय सार किसे कहते, द्रव्य को के पर्याय को, ये सोचने की बात है। मैंने बोला मैं बोलूं पूछूं तो आप जवाब दो, इसके लिए नहीं पूछता हूं, उसकी मैं अपेक्षा भी नहीं रखता हूं। लेकिन जो स्वाध्यायी हैं नियमित सुनते हैं गुरुदेव को, उनको सारे एंगल तो ख्याल में होंगे ना। जो नियम सार का अपना जो पहला अधिकार जिसमें से गुरुदेव श्री ने कारण सिद्ध पर्याय की बात निकाली, वो वहां पे कारण समय सार, कारण परमात्मा, कारण ज्ञान, कारण दर्शन, कारण दृष्टि, ये सब त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के लिए बोला है। क्या कहा? वो उसके लिए बोला है। दो अलग अलग शैलियों से कथन होता है भाई, सरल बात है, कठिन नहीं है। पहला तो समझ लो, जो मोक्ष की साधक अवस्था जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो मोक्ष का कारण है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मोक्ष का कारण है, एक प्रश्न है अपने सामने। समझ में आया? तो नियम सार की शैली में जो पूर्व पर्याय है वो तो अपूर्ण है और वो नष्ट हो जाती है, तो वो कारण कैसे बन सकती है, मोक्ष का कारण कैसे बनेगी, अपूर्ण में से पूर्ण कैसे प्रकट होगा, और जो स्वयं मर गया वो किसी दूसरे का जन्म कैसे देगा। तो नियम सार की शैली बोलती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। सुनना ध्यान से, ध्रुव भगवान आत्मा के लक्ष्य से, क्योंकि जो मोक्ष पर्याय अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रकट होता है उसमें भी वैसे तो केवली भगवान को इसका लक्ष्य है कि उसका लक्ष्य है, ऐसा कोई भेद होता नहीं। खरे खर छायिक ज्ञान में अभी पर का लक्ष्य छूट गया और स्व का लक्ष्य करना, ये एक्सरसाइज छद्मस्थों को होती है, केवली को इसका कोई भेद ही नहीं, लोका लोग एक साथ प्रकाशित हो रहा है। तो भी अपनापन सम्यक दर्शन में, श्रद्धान में, मैं ज्ञायक हूँ ऐसी प्रतीति तो बनी रहती है, उपयोग में चैतन्य का परिणमन तो होता ही होता है, और वितराग दशा प्रगति है वो तो आत्मा की लीनता की दशा है। तो जो पूर्ण रत्नत्रय की पर्याय है, रत्नत्रय की पूर्ण पर्याय, वो भी ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य से प्रकट हो रही है, इसलिए त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव कारण है और मोक्ष वो कार्य है। तो आत्मा ध्रुव स्वभाव हुआ कारण समय सार, और मोक्ष हुआ कार्य समय सार। बात समझ में आई? कठिन तो नहीं है ना? है ही नहीं, वो तो कठिन है, है। अभी जैसेनाचार्य की शैली दूसरी, वो जो 320 गाथा गुरुदेव को अत्यंत प्रिय, जिस पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी प्रवचन किए, वास्तव में वो जो अंश है वो 320 गाथा की टीका है ही नहीं। 320 गाथा की ओरिजिनल टीका में तो बिल्कुल सिंपल जो बात गाथा में कही है उन्होंने सरल भाषा में टीका में लिख दी एक पैराग्राफ। फिर उन्होंने मोक्ष अधिकार की चूली का लिखते हैं, वहां जैसे न चार का मोक्ष अधिकार पूरा हुआ है 320 पे। अमृत चंद्राचार्य का 307 गाथा में पूरा हो गया, तो 308 से सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चालू हुआ। और जैसे नाचार्य का जो बीच में गाथाएं और भी है ना, तो 320वीं गाथा में मोक्ष अधिकार पूरा हुआ है, हैं? तो अभी वो मोक्ष अधिकार पूरा हो गया तो वो लिखते हैं कि अभी मोक्ष का कारण क्या है, थोड़ा इसका भी विचार करना चाहते, ऐसा लिखा है। चूलिका माने जो कह दिया है फिर भी हमें रिपीट करना है, या जो फ्लो में नहीं कह सके हैं फिर उसको स्पेशल कहना है, तो वो जैसे आजकल परिशिष्ट लिखते हैं तो वो उन्होंने चूलिका बनाई जिनने जैसेनाचार्य ने, उसी को अपन बोलते हैं जैसेनाचार्य की टीका 320 गाथा की है, तो मोक्ष अधिकार की चूलिका। तो वो कहते मोक्ष का कारण क्या है, तो कहते जो ध्रुव परमात्मा है ना वो तो निष्क्रिय है, वो तो बंद रूप भी परिणमित नहीं होता और मोक्ष रूप भी परिणमित नहीं होता, वो तो उसमें तो परिणाम ही नहीं है, गजब बात है। वो तो अपरिणामी ध्रुव है, तो वो कारण कैसे हो सकता है, तो निष्क्रिय परिणामी का, वो तो निष्क्रिय है। तो अध्यात्म भाषा में कहें तो शुद्धात्मा भी मुख परिणाम, और आगम भाषा में कहें तो उपसम छय छय उपसम भाव, उसको भी मोक्ष का कारण कहा है उधर। तो वहां पूर्व पर्याय को कारण कहा, यहां त्रिकाली ध्रुव को कारण कहा, ये मुझे बताना है। समझ में आया? इतना फर्क है दोनों शैलियों में। तो वो पूर्व पर्याय का व्यय होकर के मोक्ष प्रकट होता है, और अब सिद्धांत में तो प्रसिद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, इसलिए उसको भी कारण समय सार कहते हैं। क्या? किस दो कारण समय सार के दो अर्थ कौन कौन से? एक त्रिकाली ध्रुव का जो परमात्मा है परम परिणामिक भाव, वो उसको भी कारण समय सार कहते हैं, और दूसरा उसके अवलंबन से जो साधक दशा प्रकट होती है निश्चय रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग, उसको भी कारण समय सार कहते हैं। अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों को मोक्ष का कारण कहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने देखो वर्तमान जे निर्मल परिणति छे, ये 263 पेज पर ऊपर का पैराग्राफ, ए निज कारण समय सार त्रिकाल छे, त्रिकाल छे ये तो छे पर मोक्षनो मार्ग छे, ए निज कारण समय सार छे। अभी इसी टाइप की बात उन्होंने ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ इसी पेज पर, उसकी दूसरी तीसरी लाइन पढ़ता हूँ नीचे से। आहा क्रमसर थाय अने परनो करता थाय नहीं, ये पर्याय की मिला विक्रम भाई, मिला आया उसमें, ये 263 पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन, क्रमशः थाय अने परनो करता थाय नहीं एवी परिणति ने निज कारण समय सार कहे छे, ते निज कारण समय सार परिणति ने द्रव्य साथे जोड़े। अभी गुरुदेव खुद कहते समझाए छे काई आमा झीणी बात छे भाई, है हाँ। अभी इसको और ज्यादा क्लियर किया तो इसमें 264 पेज पे ले लो, सबसे नीचे मुमुक्षु ने प्रश्न किया 264। ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है भाई, मैं तो इसको बहुत प्रोत्साहन करता हूं। हर मंडल में ये सिस्टम होना चाहिए। हार्ड कॉपी का उपयोग कम से कम हो, छपाने की झंझट, उतना खर्चा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो ढीली पड़ गई, फिर अभिनय हो गई, फिर उसका वो हर आदमी इधर से उधर रखे, उसके लिए एक आदमी चाहिए, उससे अच्छा एक बटन दबाओ 200 आदमी देख रहे आराम से। कितना सरल हो, कहा सम्यक दर्शन भी ऐसा एक बटन दबाने से हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। देखो सबसे नीचे है मुमुक्षु, जोड़वानो अर्थ पर्याय अने द्रव्यनो भेद न देखाए। जुड़ गई अने जब जुड़ गए तो अभी हम में और तुम में क्या भेद रहा। गुरुदेव ने समर्थन किया उसका, भेद देखाए नहीं, एनी तरफ ढळ्यो एटले पची थई रहूं, अंदर आम बढ़ो एटले पची आ द्रव्य छे अने पर्याय आ चीज छे, छेज क्या ये बात समझ में आई। जब उसमें लीन हो गई परिणति तो मैं द्रव्य हूं और तुम द्रव्य हो, मैं पर्याय हूं कि मैं तुम्हारा अवलंबन करती हूं, ये तो सब कहने की भाषा है। उस समय ऐसा कोई मैं और तुम का भेद द्रव्य और पर्याय में रहता नहीं। अभी देखना कथन मा तो आठलू आवे कि तू कारण समय सार ने कारण समय सार साथे जोड़ी दे। क्या बोला? कारण समय सार ने दो 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 बार प्रयोग किया, कारण समय सार ने कारण समय सार साथे जोड़ी दे, यानी पहला कारण समय सार भगवान आत्मा, दूसरा कारण समय सार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अभी पहले कहा था, तो भगवान आत्मा को उस सम्यक दर्शन ज्ञान चार के साथ जोड़ दे, यानी उस रूप परिणमित हो जा, ऐसा है। तो ऐसा इसको बोलते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार सुना? यहाँ काव्य में एक शब्द दो तीन बार आवे और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होवे। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, दो बार कनक शब्द आया, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोरात है वह पाए बोराए। क्या मतलब है इसका? एक कनक माने होता है गोल्ड, स्वर्ण है, सोना, तो सोना माने ये सब मकान मकान गाड़ी वाड़ी सब समझ लेना। एक कनक माने होता है धतूरा। तो बोले हैं पहले वाले कनक में दूसरे वाले कनक से 100 गुना ज्यादा नशा होता है। क्यों? धतूरा तो जब खाएगा तब पागल बनेगा, और ये खाए नहीं, खाली संयोग में मिले नहीं, मिलने की कल्पना हो, शेयर का भाव बढ़ गया, पागल हो गया, घट गया तो पागल हो गया। यह खाए बोरात है वह पाए बोरात। ये यमक अलंकार का उदाहरण है हिंदी में, गुजराती में भी हो, गुजराती साहित्य भी बहुत समृद्ध है, हैं? पागल दोनों है। ये तो कल्पना, उसने तो बेचारे ने पेट में खाया गया तो उसका रिएक्शन हुआ तो माथे में चढ़ा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ तो भी ऐसा है। तो ये भैया कारण समय सार ने कारण समय सार में जोड़ी दे। ऐसे 265 पेज पे अहीं पर्याय लेवी के द्रव्य बीच में प्रश्न है 265। पर्याय कारण समय सार पर्याय एने जोड़वी छे, तो पर्याय ने लेवाय, ध्रुव ने क्या जोड़वू छे, ये तो पड़ू छे एकलू, जोड़वू छे तो पर्याय ने, पर्याय छूटी छे यानी ध्रुव से दूर है, अने पर्याय ने जोड़वी छे, ध्रुव तो छे छे त्रिकाल निरावरण, ये कोई भी अशुद्ध पण नथी, अपूर्ण पण नथी, विकार नथी, आवरण नथी। इसे है कहीं कहीं है ये ध्रुव, कहीं कोई फैक्ट्री में, कोई जगह है, मंदिर में, कोई शास्त्र में, कहीं कहीं पर है, तीन लोक में। अरे पोते है, इसका भरोसा करने की बात है भाई, हो गया अभी समय भी।